ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 मार्च तक देश भर में 10,09,000 सोलर पैनल स्थापित कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। आनंद विहार के पास एक झुग्गी बस्ती में आज तड़के आग लगने से 3 लोगों की मौत। होली के दिन दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी और दिल्ली के रविंद्र भवन में चल रहे साहित्य उत्सव का कल अंतिम दिन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 मार्च तक देश भर में 10,09,000 सोलर पैनल स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि चंडीगढ़ तथा दमन और दीव ने अपने सरकारी भवन रूफटॉप सोलर लक्ष्यों में से 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में देश में सबसे आगे है। मंत्रालय के अनुसार राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य भी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल ने 10,00,000 घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह स्थिरता, सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। 13 फरवरी को शुरू की गई ये योजना 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करती है, जिससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होती है और नागरिकों को ऊर्जा उत्पादकों के रूप में सशक्त बनाया जाता है। ये हर घर को कार्बन उत्सर्जन कम करके जलवायु परिवर्तन में योगदान करने में सक्षम बनाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद श्री सिंह ने NDMC काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस बैठक में नई दिल्ली के बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, जल भराव और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में शहर को स्मार्ट, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प भी लिया गया। केंद्र सरकार अगले 3 साल में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि 2025-26 में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन से कैंसर रोगियों का स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर उपचार शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही है।
नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास NHM के माध्यम से कर रहे हैं और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने होली के त्योहार से पहले नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उसे खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि सिग्नेचर ब्रिज के पास एक नकली शराब की फैक्ट्री चल रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर फैक्ट्री पर छापा मारा और नकली शराब के 12,000 से अधिक क्वार्टर, तस्करी के लिए इस्तेमाल एक ऑटो रिक्शा और बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि छापेमारी में एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 2019 के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के स्वप्रचार होर्डिंगों के मामले की सुनवाई के बाद उन पर FIR दर्ज करने के आदेश का स्वागत किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि अदालत का यह आदेश अब श्री केजरीवाल की मनमानी की पोल खोलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के होर्डिंग और विज्ञापन लगाकर जनधन का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्री सचदेवा ने कहा कि भाजपा ने उस समय केजरीवाल सरकार द्वारा की जा रही इस मनमानी पर अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश ने भाजपा द्वारा श्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगाए जनधन लूट के आरोपों की पुष्टि की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के एक अधिकारी और एक निजी व्यक्ति को नौकरी के बदले रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि दोनों आरोपियों को 6 लाख रुपए की रिश्वत राशि के रूप में 15,000 रुपए की आंशिक रिश्वत की मांग करने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार के पास एक झुग्गी बस्ती में आज तड़के आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये घटना सुबह 2:15 बजे हुई। आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग ने 3 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा और लगभग 2:50 पर आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि ये घटना हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घटना की जांच के निर्देश भी दे दिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली भाजपा ने आज प्रदेश कार्यालय में होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये होली विशेष है क्योंकि दिल्ली में इस बार भाजपा सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिना भेदभाव के सभी की सेवा करेगी और उसे संगठन के साथ मिलकर डबल इंजन सरकार के काम जन जन तक पहुंचाने हैं। सरकार ने आज कहा कि वर्ष 2024 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में कोयला आयात में 8.4% की कमी आई है। एक रिपोर्ट।
कोयला मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि में कोयला आयात 183.42 मिलियन टन रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 200.19 मिलियन टन था। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 42,300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। मंत्रालय ने कहा कि बिजली के क्षेत्र को छोड़कर गैर विनियमित क्षेत्र में अधिक गिरावट देखी गई, जिसमें आयात में साल दर साल 12.01% की कमी आई। मंत्रालय ने कहा कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन में अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 3.53% की वृद्धि हुई। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए आयात में 29.8% की कमी आई। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों से इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 6% से अधिक की वृद्धि हुई है। भानु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा वास्तुकला के माध्यम से भारतीय विरासत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
यह प्रदर्शनी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। मीडिया से बात करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि NAI वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटलीकरण कार्यक्रम पर काम कर रहा है।
नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का 135वां स्थापना दिवस है। ये 35 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों की धरोहर को समेटे हुए इस ऐतिहासिक संपदा को, जो आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली, इसके डिजिटाइजेशन के ऊपर विश्व के सबसे बड़े गति से चल रहे डिजिटाइजेशन प्रोग्राम पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया काम कर रहा है। पिछले एक माह में 6 लाख पेजेस का कंजर्वेशन करने के साथ साथ में रोजाना लाखों पेजेस का डिजिटाइजेशन करके उनको अभिलेख पटल पर अपलोड किया जा रहा है।
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह प्रदर्शनी देश की वास्तुकला के विकास को प्रदर्शित करती है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
इस वर्ष 1 अप्रैल से खादी कारीगरों की मजदूरी में 20% की वृद्धि की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि वर्तमान में चरखा चलाने के लिए कताई करने वालों को 12.5 रूपए प्रति लच्छा मिलते हैं, जिसे अब बढ़ाकर 15 रूपए प्रति लच्छा किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच यमुना नदी में पर्यावरण अनुकूल यात्री सवारी फेरी चलाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से दिल्ली के पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो पा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित दिल्ली सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। होली के दिन शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों पर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार होली के दिन सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन सेवाएं 2:30 बजे शुरू होंगी और उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेंगी। दिल्ली के रविंद्र भवन में चल रहे साहित्य उत्सव का कल अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एशिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव में इस बार 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक लेखक भाग ले रहे हैं।
मंडी हाउस में 7 मार्च से शुरू हुए इस महोत्सव में हिंदी, उर्दू, मलयालम, कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी सहित लगभग 50 भाषाओं के 700 से अधिक लेखक भाग ले रहे हैं। इस बार भारतीय साहित्यिक परंपराएं इस महोत्सव का विषय है। इसमें युवा लेखक, पूर्वोत्तर और आदिवासी लेखक, LGBTQ लेखक, कवि, प्रकाशक और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल हो रहे हैं। कला, कविता, पुस्तक, साहित्य और पठन पाठन में रुचि रखने वाले लोग साहित्य उत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बिहार से आए एक आगंतुक ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस उत्सव की उमंग उन्हें उनके पुराने दिनों की याद दिलाती है। वहीं उत्तर प्रदेश से आए एक अन्य आगंतुक ने कहा कि ये उत्सव भाषा और साहित्य का महापर्व है। साहित्य उत्सव में प्रवेश निःशुल्क है और कल इसका आखिरी दिन है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और निफ्टैम कुंडली ने अनेक तकनीकी सत्रों का आयोजन किया है। 2 दिवसीय सत्रों में भारत के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं।
सत्र के दौरान गहन विचार विमर्श किया गया और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, पैकेजिंग, सुरक्षा और नियामक ढांचे में नवाचार की खोज पर चर्चा हुई। उत्कृष्टता सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और पता लगाने की क्षमता पर एक सत्र को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सुब्रत गुप्ता ने रासायनिक प्रदूषक के खतरों और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सत्र आहार 2025 मेले का हिस्सा था, जो इस महीने की 4 से 8 तारीख तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो गई है। 3 दिन की प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 250 पैरा एथलीट शामिल हो रहे हैं। इनमें 145 भारतीय और 105 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी 90 खेल प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 मार्च तक देश भर में 10,09,000 सोलर पैनल स्थापित कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। आनंद विहार के पास एक झुग्गी बस्ती में आज तड़के आग लगने से 3 लोगों की मौत। होली के दिन दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी और दिल्ली के रविंद्र भवन में चल रहे साहित्य उत्सव का कल अंतिम दिन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।